היו עוד בהנו. פרט הוא עד פולשה מלהתמיל.
אביה.
אוס. פולשה כי באתי אף כוסונד הוא מצא. הוא פולשה מבוצ'יס. כשי भाई बनने भेज दी कि देखो इसमें कैसी कैसी चीजें आती है। मेरी निगाह में उसमें जो चीजें दी गई है उससे हिंदू धर्म ऊंचे नहीं जाता है, ये बहुत गिरता है। दोनों में काफी झूठ ही भरा है। हमला क्या है, कोई अच्छे कांग्रेसमैन हम जिसको मान सकते उनको छोड़ा नहीं गया है और ऐसा ही बताया है कि उन लोगों से जो कुछ भी हुआ है वो हिंदुस्तान की सेवा नहीं हुई है लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू धर्म को हानि हुई है। और पीछे जो चीज कभी बन नहीं सकती है ऐसी चीज उसमें बताई गई है और ये लिखा गया है हिंदू धर्म के समर्थन में उसकी रक्षा के लिए। मैंने तो बहुत दफा के लिया है, अब भी कहना चाहता हूँ हिंदू धर्म के जितने शास्त्र पढ़े उसमें से मैंने कहीं ऐसे नहीं पाया है कि झूठ बोलने से और इस तरह से और एक बनी बनाई चीज कहने से धर्म की कोई भी धर्म की हिंदू धर्म को तो छोड़ो कोई भी धर्म की भी रक्षा हो सकती हो नहीं सकती है। ये तो ढंग हुआ धर्म को का नाश करने का और नाश करना वो भी धर्म के नाम से। एक आदमी जानता नहीं है और पीछे काम करता है इससे कुछ बुरा पैदा हो जाता है तो ईश्वर के दरबार में भी उसमें तो माफी मिले संभव है लेकिन जो आदमी अपने आप क्योंकि वो तो ईश्वर से झूठा बनाना है वो तो कोई अनजानपन में नहीं बन सकता है तो यहाँ तो झूठा बनाया है। तो मैं तो उसमें जो मेरे पास तो नाम ठाम बने हैं अखबार का नाम है लिखने वाला का नाम है लेकिन वो देने से क्या फायदा। मैं कोई उन लोगों की जो लेखक है उनकी प्लानिंग क्या करने वाला था। भजन में तो हमको आता है आज के भजन में नहीं वो तो ये आता है ना कि एक भजन वो भी आप लोगों ने सुना है कि निंदक बाबा वीर हमारे क्यों वो तो निंदा करने वाले हों तो अपना वीर बना रखा क्यों बनाया कि वो हमको तो एक कोई हमें उसको देते नहीं है और हमारा भला करता है। भला क्यों करता है कि वो तो निंदा तो करने लायक नहीं है चीज उसकी वो निंदा करता है तो पीछे लोग उसी धोखे में हमेशा के लिए नहीं आ सकते दो दिन आवे चार दिन आवे पीछे छूट जाता है। और आज के तो ये बताते हैं कि सबसे ऊंची कौन सी सगाई है तो कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई ये बात है तो यहाँ तो प्रेम की सगाई नहीं होती तो सबसे ऊंची नहीं है या तो ये हिंदू धर्म का भजन है वो या तो झूठा है या तो विषय ये कहो कि दूसरी चीज है वो प्रेम की सगाई के नजीक जा नहीं सकते लेकिन उसके उल्टा कि सबसे ऊंची ये कहें तब कि वैर की सगाई भी कैसे कर सकते हैं कि तो वैरी बनना दुश्मन बनना किसी का और किसी को दुश्मन मानना और पीछे उनके साथ भरे करना वगैरह करना उनके उनका बुरा करने के लिए झूठ भी बनाना जब कुछ झूठ है नहीं तो बनाना उसे मैं कहता हूँ हो नहीं सकता। तो मुझको लगा कि ये मैं थोड़ी सी बात तो कह दूंगा। अभी आपने देखा अखबार में देखा होगा कि जो हमारे प्रधान लोग और प्रधान के प्रतिनिधि यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बुलाने से आ गए तो उनको बुलाए हैं वो जो रेशनिंग होता है और किसान लोग जो अनाज बेचते हैं कुछ भी, तो वो इतना ही पैसा उसको हुकूमत की तरफ से मिल सकता है, ऐसा है वो बनाए रखा है। तो उससे फायदा है कि नुकसान है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो जानना चाहिए कि अनेक हिंदुस्तान के सूबे भरे हैं, सूबे के लोग क्या कहना चाहते हैं, पैसे वो निर्णय कर सकते हैं। तो सूबे को लोगों को बढ़ाया, मैंने प्रार्थना की थी राजेंद्र बाबू से कि अगर वो लोग आते हैं तो प्रधान लोग तो मैं पहचानता हूँ, उनका मैं सेवक हूँ, मित्र हूँ, तो मेरा भी परिचय करा लो, तो उनके दिल में कुछ भ्रमणा होगी तो उसको मैं काटने की कोशिश करूँगा। इस निगाह से उन लोगों को बुलाए राजेंद्र बाबू ने, पूछे आए, वो भी तो थे, दूसरे भी आए थे, तो वो सब बात तो मैं कोई बयान देना नहीं चाहता हूँ, उसमें इतना वक्त भी नहीं है, लेकिन एक बात हुई वो तो मैं आपको कह सकता हूँ। उसका ये आया, मैंने देखा कि हम सब एक बात तो करते हैं कि लोगों का राज है, आज तक तो राज चलता था उपदेशी का, अंग्रेज का, उसको तो लोगों का राज नहीं कह सकते। जब वो परराज्य होता है तो उसमें परराज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जैसा कहें ऐसा हमारे करना चाहिए, न करे तो हमारे सामने बंदूक पड़ी है, जेल खाना है। अब जो हुआ है वो राज हमारा के माने तो एक गरीब आदमी पड़ा है 40 करोड़ की आबादी, 40 करोड़ का राज्य हुआ तो उसे सब राज्य कर्ता बना, उसकी मर्यादा तो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो उन लोगों का जब राज्य बना है तो वो क्या चाहते हैं वो तो समझना चाहिए ना, और कोई कहीं अपनी राय बस बना लेगा मैं तो इस तरह से करूँगा तो वो नहीं कह सकता है। मेरे जैसा आदमी तो मीठा बकवाद तो करे, करना चाहता है तो, क्योंकि मैं तो किसी की तरफ से तो चुनाव से तो नहीं आया हूँ, मैं तो किसी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरा अपना प्रतिनिधि हूँ अगर हूँ तो। लेकिन जो प्रधान लोग आ गए जो हुकूमत चलाते हैं हर सूबे में और यहाँ मध्य प्रांत मध्य बिंदु में, वो तो लोगों के छुने हुए लोग हैं, तो उनको तो लोग की क्या राय है उसकी कदर करना और उसको उसके मुताबिक हुकूमत चलाना, वो तो हम कह सकते हैं कि लौकिक राज्य बना। कब वो भी कि जब वो मजबूर नहीं करते हैं, लांच रुश्वत देकर उनका मत नहीं ले लिया है, लेकिन वो अपनी राय के मुताबिक वो मत ले लेते हैं तो करें क्या, लोगों को समझाना। सब जितने उम्मीदवार होते हैं प्रतिनिधि होने का, उन लोगों को समझाना है, उसमें से जिसको चुनना है उसको चुन दे, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कोई उसमें उस पर दबाव नहीं डाल सकते, और अपनी इच्छा के मुताबिक वो चुनाव करते हैं, तब तो कह सकते हैं कि लौकिक राज्य हुआ। ऐसे राज्य को और ऐसे जो हुकूमत चलाने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, वो एक बड़ी बात थी। तो हम एकाएक भूल तो नहीं सकते हैं, तो नहीं भूल सकते हैं कि कल तक तो हम गुलाम बने थे, आज हम आजाद बने हैं तो कैसे करना, तो वो झंझट बहुत पड़ जाती है और इसमें हमको समझना खींच लेना बड़ी मुसीबत की बात है। तो मैं तो बहुत पुराना सेवक हूँ, बहुत सेवा की है, तो उसे मैंने सोचा कि अच्छा मैं कह तो दूँ, मैंने कह तो दिया, वो तो मेरी बात बड़े आदर से सुनी उन लोगों ने, क्या करेंगे वो तो मुझको पता नहीं है, लेकिन मैं तो एक बताता हूँ कि ऐसे हम आज पड़े हैं। और इस तरह से होता है क्या कि जो हमारा कर्तव्य है वो तो रह जाता है, और जो एक मेल हमारे में भरा है वो मेल बाहर निकल जाता है, तो हर जगह पे। इसलिए ये वैमनस्य होता है कि हिंदू और मुसलमान सिख वो तो आपस में झगड़ा ही करने के लिए पैदा हुए हैं, और अपने साथ लेने लगी तो उसको हटा दो, कत्ल करो, डरा दो, किसी तरह से भगा दो अपने पास से, अपने गांव में न रहे। ये हालत तो बड़ी जाहिरियत हो गई। इसी तरह से ये खुराक के बारे में भी कि जो हमको करना चाहिए वो नहीं करते हैं, हमको जो मेहनत से खुराक नहीं है तो पैदा करना चाहिए वो नहीं, लेकिन हम विदेश के रह के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, या तो ये मध्य बिंदु है, मध्यवर्ती हुकूमत है वो क्या करती है, वो तो पीछे लौकिक राज्य नहीं हुआ उसमें तो उसको और देखते देखना, तो पीछे विवर साहब में और इन लोगों में फर्क क्या, वो तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए वो करते करते हमको काफ़ी परिश्रम पड़ता है और पीछे झंझट में पड़ जाते हैं क्या करें। इसका सबब ये भी है कि हम तो प्रतिनिधि बन गए हैं, वो जिनके प्रतिनिधि बने हैं उनके संपर्क में पूरा पूरा रहते नहीं है, उनको मिलते नहीं है हमेशा, उनका विचार है उसका ख्याल नहीं करते हैं, रहता नहीं। हमारे अखबार भी ऐसे गंदी बात करना, गंदा चलना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा बस तो करना चाहिए वो नहीं होता है और नहीं करना चाहिए होता जाता है, ये भारी बात है हमारे। तो ऐसी मैं कहता था कि मुझको कपड़ा की भी बात तो करना है, तो आज तो मैं थोड़ी ही करूँगा, पूरी नहीं शायद मैं कर सकूँगा। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जैसी खुराक की बात है उसमें कोई रुकावट होनी चाहिए, सब निकल जाए तो हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा है अनाज, मेरा विश्वास है कि जो हमको आराम से मिलेगा। और मेरा ये भी विश्वास है कि हम करोड़ों रुपया को बचा सकते हैं एक शर्त से, कि जो हमारे ताजीर लोग पड़े, अनाज को बेचने वाले पड़े, जो मध्य में किसान और हम बीच में जो पड़े हैं कि जो वहाँ से लेते हैं अनाज और पीछे हमको बेचते हैं, वो अगर बदमाशी ना करें, वो अपना ही अपना पेट भरने की बात नहीं है लेकिन अपनी थैली भरना, जितने पैसे लूट सकते हैं इतना लूटना ही है, वो अगर छोड़ दें और समझे कि हमारे तो क्योंकि वो भी लोग में पड़े हैं तो उसमें लोग की हानि तो वो कर नहीं सकते हैं, ऐसे वो समझ जाएं कि अब ज़माना चला गया कि जब हम अपना खीसा ही अपनी जेब में पैसा ही डालने का सीखे थे। अब भी तो जो सीखना है वो तो ये है कि लोगों के खातर हम जिंदा रहते हैं, लोगों को खाना देकर हम खाने वाले वो करें। तो मैं आपको कहता हूँ कि हम करोड़ों रुपया बचा सकते हैं, दुनिया को हमको तकलीफ नहीं देनी पड़े दूसरी को हिंदुस्तान के बाहर कि हमको कुछ तो खुराक भेजो, क्यों भेजें, हम उनको भी घाटा है, उनको चाहिए। और हमारा मुल्क ऐसा पड़ा है, हमारे यहाँ तो गंगा जमुना जैसी बड़ी नदियाँ पड़ी है, हमारे वहाँ इतना पहाड़ पड़ा है, तीन ऋतु पड़ी है कि जो अचूक आती है, बाहरलभा हमारी गुनाह के लिए पानी नहीं आता है लेकिन काफ़ी आ जाता है, तो कुछ हमेशा दुष्काल की हालत में हम रहते हैं ऐसा तो है नहीं। उस मुल्क में जो हमको खाना चाहिए वो पैदा करने में पड़ी सी क्या, मुझको रमत बात लगती है एक शर्त से कि हमारी माता है हमारे भाइयों के वो आलसी ना बने, खामोखा बातचीत में ऐशारम में वक्त न गमावे, लेकिन काम ही करना है, उद्यम करना है, और उद्यम भी करना है हिंदुस्तान के खातर, यज्ञार्थ करना है, तो वैसे हमारे यहाँ कोई घाटा हो ही नहीं सकता, आज है ही, मेरे को उसको विश्वास है। तो जो मैंने अनाज के लिए कहा वही मैं कपड़ा के लिए कहना चाहता हूँ, और कपड़ा के लिए तो मैं ज़्यादा कहना चाहता हूँ। आखिर में अनाज के लिए खास करके तो हमारे पास कोई संस्था नहीं पड़ी है, लेकिन ये कपड़ों के लिए तो कांग्रेस ने बनाई, और वो संस्था भी कब, जब से कांग्रेस पैदा हुई है, नहीं बोल रहा हूँ, जब से कांग्रेस में मैं दाखिल हो गया और दक्षिण अफ्रीका से आया, और कांग्रेस ने ये तय किया कि अभी हमारे तो जिस तरह से गांधी कहेगा इस तरह से करीब करीब करना है, तब से आज तक तो बहुत वर्ष की बात हो गई, तो तब से यही बात हो गई है कि नहीं हमारे बहिष्कार करना है, किस चीज़ का, विदेशी कपड़ों का नहीं, विदेशी कपड़ों का तो बहिष्कार है लेकिन वेदों के कपड़े हैं उनका भी बहिष्कार जब करें तब हम 60 करोड़ से ज्यादा, आज तो 60 करोड़ से बहुत ज्यादा हो गया, शायद 60 करोड़ का एक अवश्य से भी ज्यादा हो गए। इतना इतने रुपये का कपड़ा हम बचा लेते हैं रुमानी, इतना कपड़ा हमने बचा लिया। इसका मतलब ये होगा कि इतना कपड़ा हमने अपनी देहातों में पैदा किया, वो खादी का शास्त्र पड़ा है, और वो उसका अमल करने के लिए है। वो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, उसके पहले खादी बोर्ड के नाम से था, जमनालाल जी सिंडा थे, जमनालाल जी के मेहनत से वो चीज़ बनी थी, लेकिन वो सब कांग्रेस के मातेहट बनी। कांग्रेस ने उसको आज़ादी भी दे दी, क्योंकि वो काम तो खास काम था, तो इसलिए वो बना लिया, उसको पैसे भी दिए, और उससे आज काम चलता है, और अभी भी वो चीज़ मौजूद है। तो वो कोई वो चरखा संघ में पड़े हैं, वो आदमी कह नहीं सकेंगे कि नहीं हिंदुस्तान में इतना कपास पड़ा है, इतनी कारीगरी हुनर पड़ा है, इतने करघा है, इतने चरखे पड़े हैं, जो सामान चाहिए वो उसमें से एक भी चीज़ हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही पड़ी है। तब क्या वजह है कि कपड़े के लिए भी हम भिक्षुक बने, कपड़े के लिए हमारे पास ऐसा लगे करिए मेरे से जो हमको कपड़ा नहीं मिलेगा तो हम पहने क्या का नंगा फिरेंगे। वो उससे ज़्यादा कोई अज्ञान में तो कल्पना नहीं, मेरी कल्पना में नहीं आता है। हम अगर 10-20 आदमी लेते, 5-25 आदमी या तो कहो कि 1 करोड़ आदमी, नहीं हम तो 40 करोड़ पड़े हैं। और हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क 1900 माइल लंबा, अभी भले पाकिस्तान हो गया, उससे कोई हिंदुस्तान के हैं वो तो मिट छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ो पाकिस्तान को, तो पीछे ये रहें उसमें जितना चाहिए इतना कपास पैदा होता, कारीगर पड़े हैं, जुड़ा लोग पड़े हैं, वो काटिन पड़ी है, करोड़ों की तादाद में काटिन पड़ी है। अगर हम उनके पास से काम दें तो उनके घर में जाए, उनको बतावे, सच्ची सेवा सिखा लें, तो क्या बचे। और उनके पास से कोई मुफ्त तो काम लेना नहीं, उनको दाम लेकर उनके पास से काम लेना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान तो ऊँचे चढ़ जाता है, लेकिन वो कहाँ चरखा संघ रहा, कहाँ आपकी खद्दर रही, कहाँ वो चीज रही। अभी तो बात यह हो जाती है कि मिल वो हमारे मालिक हैं, वो अगर हमको कपड़ा दें तो पहने, न दें तो हम नंगे रह जाएंगे। मैं कहता हूँ कि वो हमारी शर्म की निशानी है, उसमें कोई हमारी भलाई की निशानी में उसमें नहीं पाता हूँ कहीं। कि मैं तो एक बड़ा मिल का मालिक है, उसके घर में रहता हूँ, रहता तो हूँ, लेकिन तो भी मैं तो उनको हमेशा कहता हूँ, और वो भी कहते हैं कि हाँ करो, वो करो और लोग समझ जाएं तो हमें क्या है। लेकिन जब तक लोग नहीं समझते हैं और लोग लेते हैं, तो भाई मैं तो ऐसे बना हूँ, मैं आज ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि चटो भी चलो मेरी मिल है उसको मैं जला दूँ। मिल पड़ी है, उसमें मैं कपड़े पैदा करता हूँ, वो कपड़े मैं कोई सब थोड़ा पहनता हूँ, लोग चाहते हैं लोग को मैं दे लेता हूँ, पैसा लेता हूँ, तो पैसा तो मैं तो बाजार का दाम से ही ले सकता हूँ, दूसरी मिल पड़ी है उसके साथ में करता हूँ, तो इसलिए वो है। तो मैं कोई किसी को मजबूर तो नहीं करता हूँ, इसलिए उनके घर में पड़ा हूँ, लेकिन इससे किसी के गुमान में आना नहीं चाहिए कि अभी तो मैं खादी भक्त कम हो गया हूँ। मैं तो वही हूँ पहले से, जो मैंने शुरू किया उस आवाज़ में कोई भी कमी नहीं हुई है, लेकिन मेरी आवाज़ तो और भी बुलंद हो गई है। मेरा कोई पूछे सुने नहीं, ऐसा करे नहीं वो दूसरी बात है, इससे मुझको क्या वास्ता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम ये 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 खुराक पर कंट्रोल है उसको निकाल देते हैं, तो वो मैं जो इस कंट्रोल को निकालने की बात करता हूँ तो ज्यादा ही उसमें भी ऐसा तो है रहता नहीं है कि मिलों को तब जला दो, मिल रहे उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन वो मिल के लिए न करें। हुकूमत का काम है कि जो कुछ भी करना है, जितना साहस करना है, जितना उत्तेजन देना है, वो खादी को ही दे सकते हैं। खादी बनाने वाले हैं उनको ऊंचे ले जा सकते हैं, उनके लिए पैसा खर्च सकते हैं, तो उसमें तो बहुत पैसा भी नहीं खर्चना पड़े। इसमें हमको तो पता भी नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता, तो मुझको तो है कि मिल के लिए हम कितना पैसा खर्चते हैं, कितनी उनके लिए सहूलियत पैदा करते हैं, तब तो हो सकता है। लेकिन ये तो खादी वाले हैं, खादी में आप लोग मना के चरखा चलाते हैं, आपके लिए क्या सहूलियत करने की जरूरत है? आपके लिए थोड़ी बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ चलानी पड़े या तो बहुत बहुत व्यवसाय भी करना पड़े। बस आप लोगों को कह दिया, आप उद्यम करती है, वो सूट काटती है, वो जुलाहे कर ले जाते हैं, खादी बनती है। जैसी चाहिए इसमें, बारीक चाहिए तो बारीक, मोटी चाहिए तो मोटी, सब कपड़े बन सकते हैं। अभी तो हम जानते हैं कि रंगीन कपड़े भी बन सकते हैं, नक्शीदार भी बन सकते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा हमारा मुल्क होते हुए, इतने 40 करोड़ की आबादी होते हुए, हम बिल्कुल आलसी रहें और समझे नहीं, हमारे में जड़ता पैदा हो जाए तो हमको नंगा फेंकना पड़े। तो मैंने तो कहा कि मेरी अहिंसा तो मुझको बड़ी निर्दय बना सकती है, तो मैं तो निर्दय बनूंगा। लोगों को कहूंगा कि अगर आपको कपड़ा पहनना है तो आप पैदा करें, पैदा करके पहनो, पैदा करने के लिए जितनी सहूलियत पैदा करनी हो मैं करूँ, लेकिन मैं आपको कपड़ा, क्योंकि आप आलस में पड़े रहते हैं, उसी मैं मिल से कपड़ा खरीद कर आपको नहीं दूंगा, या तो आपको नहीं कहूँगा कि आप मिल से लें, तो आपको इससे बेहतर है कि नागा नंगे फिरो, लेकिन ये कपड़ा तो यहाँ से ही पैदा करो। तो मैं कहता हूँ कि खूब दौलत हम अपने मुल्क में रखते हैं, और तब पीछे वो जो हमारे ब्लैक मार्केट है, वो ताजिर लोग जो हमको खा जाते हैं, वो सब कर नहीं सकते हैं, गंदगी में से हम बच जाते हैं। जो चीज़ हम करें कि अनाज है वो हमारे किसान पैदा करें और हम खाएं, और उसको जो दाम लेना है ले, उसमें ताजिर लोग वो किसानों को की सेवा करने के लिए तिजारत करें, लेकिन अपना घर भरने के लिए पेट तो भरें लेकिन घर नहीं भर सकते, अपनी जेब में पैसे नहीं डाल सकते। इस तरह से करें तो हिंदुस्तान तो एक खूबसूरत मुल्क बन जाता है। आज तो हिंदुस्तान आज़ाद तो है लेकिन बदसूरत बन रहा है, इतना ही मैं तो आपको आज तो कहूँगा।